તારીખ 4/5/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 25
ભ્રમણની ચિંતામાં આવેલા જીવને કેવા પ્રકારના પરિણામ રૂપે હિન્દીમાં ભવભ્રમણ કી ચિંતા મેં આને વાલે જીવ કો કિસ પ્રકાર કે પરિણામ હોતે હૈ और उनको कैसे खबर पड़े कि हम चिंता में यथार्थ रूप से आए हुए हैं। बाहर के संयोगों के इनके ऊपर कैसे असर होती है और स्वयं कितनी मात्रा में चिंता में है, ये सब विस्तार से समझाइए। दो तीन प्रश्न है एक साथ। भव भ्रमण की चिंता में आए हुए जीव को कैसे परिणाम भरते हैं? जो चिंता के परिणाम होते हैं वो एक प्रकार का तनाव होता है, टेंशन होता है, उसको चिंता कहते हैं। जैसे कोई रोग आता है तो उसकी चिंता होती है, कोई अनेक प्रकार की आपत्ति आती है तो इसकी भी चिंता होती है। तो ये हमारा भव भ्रमण चार गति में अनादि से हो रहा है और इसके मिटाने का इलाज हमें मालूम नहीं है, पर इलाज मालूम नहीं होने से और दूसरे दूसरे प्राणी जैसे दुख भोग रहे हैं ऐसे अनेक प्रकार के दुख भोगना पड़ेगा। इसकी चिंता अभी तक संयोग की जितनी चिंता हुई है इससे अधिक, बहुत अधिक, अधिक मैंने बहुत अधिक चिंता आती है और इलाज नहीं मिलता है तो बहुत व्यथा होती है इसकी, ऐसी एक परिस्थिति आती है, ऐसी परिस्थिति बनती है। तो उतना अधिक अधिक से अधिक टेंशन हुए और अपने को उसकी खबर नहीं पड़े तो कैसे बने, उसका एक पहलू अवश्य है जो इस प्रश्न में रखा है कि संयोग की इसके ऊपर असर कैसे होती है, कि सब संयोग की परिस्थिति गौण हो जाती है, अनुकूलता भी गौण हो जाती है, प्रतिकूलता भी गौण हो जाती है, कि इसकी कोई ज्यादा फिक्र करने योग्य नहीं है, परिभ्रमण मिटना चाहिए। देखिए, हम एक बार भी मरना नहीं चाहते, मरना चाहते क्या? मरने के कारणभूत कोई बड़ा लागू हो गया और हमको मालूम है कि कैंसर आजकल मिटता नहीं है, फिर भी हम मिट जाए तो अच्छा, ऐसा करके जितना भी इलाज हो सकता है उतना इलाज कराने को जाते हैं। ये बात तो प्रसिद्ध है कि कैंसर का कोई इलाज मिला नहीं है और कोई मिटा नहीं सकते, फिर भी हम मरना नहीं चाहते हैं। आकाश पाताल एक हो जाए तो भी हमको जिंदा रहना है, ये हमारा अभिप्राय है कि नहीं है? एक मृत्यु के लिए हमारा इतना गंभीर सीरियस प्रयास चलता है और अनंत जन्म मरण के लिए हम कुछ प्रयास नहीं करते हैं, ये हमारी बुद्धिमानी किस काम की? हम कहाँ के बुद्धिमान हैं? हमारा कैलकुलेटर फेल हो गया है। एक मरण की उतनी चिंता, उतना प्रयास और अनंत जन्म मरण की कोई चिंता और कोई प्रयास नहीं। क्या क्या गिनती है इसके पीछे? कोई इसके पीछे गिनती है ऐसा नहीं लगता है। हम आंख मीच जाते हैं, जैसे कोई चूहा ऐसा विचार करे कि बिल्ली आने पर आंख बीत जाना है, तो आंख बीत जाने से बिल्ली खाएगी नहीं उसको, आंख खुली रखे तो भी खा जाएगी और बंद रखे तो भी खा जाएगी। ऐसे हम परिभ्रमण की चिंता को अवॉइड करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, तो क्या परिभ्रमण नहीं होगा? बंद हो जाएगा क्या? तो वास्तविकता को हमें समझना है। और संयोगों को सब गौण हो जाए, संयोग की चिंता एकदम गौण हो जाए, मतलब बाहर के संयोगों की कोई असर नहीं होती है। फिर प्रतिकूलता आती है कि अनुकूलता आती है उसकी कोई असर नहीं होती है। और कितनी मात्रा में चिंता में है, मात्रा क्या, ऐसी चिंता कभी हुई ही नहीं हो, ऐसी चिंता हो गई। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि मुमुक्षु और उत्कृष्ट मुमुक्षु दोनों में किस प्रकार के परिणाम वर्तते होते हैं, किस प्रकार के परिणाम रहते हैं, और दोनों के परिणामों में क्या अंतर होता है, डिग्री अपेक्षा से क्या अंतर होता है, ऐसा प्रश्न है। परिणामों की डिग्री, डिग्री मैंने तारतम्यता, जो सामान्य मुमुक्षु है वो ऊपर ऊपर से चलता है, उसको आत्मकल्याण की भावना भी ऊपर ऊपर से होती है, सामान्य इच्छा होती है वैसे ही होती है, और उदय में से उसका रस जो है वर्तमान उदय भावों में, उदय के कार्यों में वो तन्मय हो जाता है, थोड़ा बहुत सुनता है, पढ़ता है, पूजा भक्ति दयादान कर लेता है, लेकिन उदय में कोई, उदय भाव में उसको कोई फेर पड़ता नहीं है, प्रकृति पर उसका भी फेर नहीं होता है, उसकी जो प्रकृति है वो वैसे के वैसे रह जाती है, और जाने अनजाने में उनको संतुष्ट पड़ा आ जाता है कि मैं कुछ करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, कुछ न कुछ तो हूं मैं कर लेता हूं। तो ऐसे सामान्य मुमुक्षुता तो जीव को अनेक बार आई है, सामान्य मुमुक्षुता तो जीव को अनेक बार आई है, तो उसके परिणाम में सामान्य भाव सब चलता है, विशेष भाव अपना संसार का चलता है, इसमें रस भी उसको ज्यादा आता है, एकाग्रता भी ज्यादा रहती है, और जो भी उसको निवृत्ति का टाइम मिलता है उसमें थोड़ा बहुत धार्मिक साधन वो कर लेता है, उसमें कभी उसका शास्त्र पढ़ता है तो सूक्ष्म भी बढ़ता है, शास्त्र ज्ञान भी बढ़ता है, कदापि व्रत उपवास आदि करता है तो कषाई की मंदता भी होती है, लेकिन प्रकृति में कोई फेर नहीं पड़ेगा उसको। क्रोधी है वो क्रोधी रहेगा, लोभी है वो लोभी रहेगा, अभिमानी है तो अभिमानी रहेगा, और मायाचार के ज्यादा परिणाम झूठ बोलने आदि का होता तो वो होता रहेगा उसको, बहुत ऊपर ऊपर से चलेगा। उसको ये लगता है कि यथाशक्ति मैं कुछ न कुछ तो कर सकता, कर लेता हूं, ऐसे करते करते कभी न कभी मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, इस भाव में नहीं होगा तो दो चार भाव में हो जाएगा, उसे आके आगे जाके हो जाएगा, ऐसा वो उधारी का व्यापार करता है। उसको ज्यादा दरकार नहीं होती है, वो ओक संज्ञा में चलता है, जो बात समझ में आती है उसका उसको प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ओक संज्ञा बनी रहती है। और सत्संग असत्संग के विषय में भी उनको खुद को परीक्षा बुद्धि नहीं होती कि हमें सत्संग यथार्थ सत्संग कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, और यथार्थ सत्संग मिले तो किसी भी कीमत पे हमें सत्संग में रहना चाहिए, इसका कोई भी कॉस्ट हो हमको मंजूर है। वो क्या करता है कि कोई भी सुनाने वाला हो, जो विद्वान आए हो, जो भी पंडित आ जाए, कोई त्यागी हो, कोई महाराज हो, सुन लेता है, परीक्षा बुद्धि नहीं है। तो सत्संग और सत्संग के विषय में उनका विवेक नहीं होता है, ऐसा बनता है। जबकि उत्कृष्ट मुमुक्षु है, उसमें अंतर में से आत्मकल्याण की भावना उठी है। कहाँ से उठी है? चैतन्य में से, आत्मा में से उठी है, और उसको आत्मकल्याण नहीं होता है तो वेदना आती है। सामान्य मुमुक्षु को वेदना की डिग्री नहीं होती है, इसके परिणाम मन में वेदना आती है। ये वेदना की जो डिग्री है तो इसके उत्कृष्ट मोक्षता को ले आती है, पात्रता उससे बहुत बढ़ती है। वेदना से दर्शन मोह कमजोर हो जाता है और ज्ञान में भी निर्मलता आती रहती है। और जो उत्कृष्ट मुमुक्षु है उसको परिपूर्ण शुद्ध होने का ध्येय होता है। इसका गोल क्या है कि जैसे सिद्ध परमात्मा परिपूर्ण शुद्ध हो गए, उनको एक अंश मात्र विकार नहीं है, वैसे हमको भी नहीं होना चाहिए। हम आत्मा है, हमारे आत्मा पे कलंक क्यों, और थोड़ा सा भी दाग क्यों? तो पूर्ण शुद्धि होने का उनका पूर्णता का लक्ष्य होता है, वो अवश्य अवश्य होता है, दृढ़ मोक्षेच्छा उनकी होती है। और जो जो बात वो समझता है उसका अमलीकरण, अमल करता है, प्रयोग करता है, और उस तरह इस प्रकार वो आगे बढ़ता जाता है। तो बहुत जागृत है, अपने आत्महित के विषय में बहुत जागृत है। किस प्रकार के परिणाम से मेरा अहित हो रहा है और किस प्रकार के परिणाम से मेरा हित होता है, उनकी जागृति उनको हमेशा हमेशा रहती है। उतना ही नहीं, उनको संसार की वांछाएं सब बंद हो जाती है। सामान्य प्रकार से सभी मनुष्य को अपनी अपनी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा होती है। बहुत महत्वाकांक्षा नहीं हो तो आशा अपेक्षा से बिना तो कोई जिंदा रहता ही नहीं, आशा की दूरी पर जीवन चलता है सबका, वरना जीने में रस क्या। लेकिन जो उत्तम मुमुक्षु होता है उनकी कोई संसार की कामना नहीं रहती है। मोक्ष कामेण, तो मोक्ष की कामना वाला हो गया, पूर्ण शुद्धि की कामना वाला हो गया। उनको आत्मकल्याण के सिवाय और अपने आत्मा के सुख शांति सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, एक मुझे मेरा आत्मा का सुख शांति ही चाहिए, जगत में से अब मुझे कुछ लेना नहीं है। इस प्रकार के खास प्रकार की पात्रता उत्तम कोटि के मुमुक्षु को होती है, ऐसा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और एक प्रश्न है, भावना किसे कहते हैं, भावना का यथार्थ स्वरूप क्या है? भावना इसे कहते हैं कि जो अंतर में से आत्मा में से उठी हो। आत्मा में से उठी हो इसका मतलब यह है कि राग द्वेष में से नहीं उठी हो। बेंसरी के वचनामृत में भावना का 21 नंबर का वचनामृत है, इसमें है 21 नंबर की है ना इसमें। चलो ये सबके सामने मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी, अभी जरूरत नहीं है। पृष्ठ संख्या 8, ये जो सबके हाथ में किताब है ना, अध्यात्म सुधा, उसमें 8 नंबर का पेज है, उसमें है। चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना है। मतलब क्या इसका, कि राग द्वेष में से नहीं उदित हुई भावना, किसी का राग हो गया इसके भावना इसलिए भावना हुई है, ऐसी भी बात नहीं, और किसी से द्वेष हो गया इसलिए भावना हुई है ऐसा भी नहीं है। कोई राग द्वेष का कारण से वो भावना नहीं उठी है, सिर्फ एक अकेले अपने आत्मकल्याण से उठी हुई भावना है। वो है ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलती ही है, ये यथार्थ भावना है। चैतन्य में से उत्पन्न हुई भावना यथार्थ है, कोई दूसरे कारण से उत्पन्न हुई भावना वो यथार्थ भावना नहीं है। तो ये भावना का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, कि ये भावना के साथ पुरुषार्थ अवश्य अवश्य प्रयास चलता ही है। जो ऊपर ऊपर की भावना और इच्छा होती है उसमें प्रयास नहीं चलेगा, और सच्ची भावना होगी तो प्रयास चले बिना रहेगा। तो भावना पुरुषार्थ के उत्पादक हो गई। क्या हम लोग प्रश्न कभी कभी करते हैं कि आत्मा का पुरुषार्थ कैसे करना, लेकिन जिसको भावना हुई हो उसको पुरुषार्थ कैसे करना, ये प्रश्न का अवकाश नहीं है, उसमें प्रश्न आएगा ही नहीं। हाँ हाँ, तो क्या है कि आत्मा में अंतरात्मा में से भावना उठी है,
लोगों की मांग है कि जो प्रश्न बीच में आते हो उनको आप दोबारा लेकर
करना पड़ेगा,
नहीं पड़ता इसलिए उनको
बराबर है। प्रश्न वो उठा कि चैतन्य में से चैतन्य को मैंने आत्मा को आत्मा में से परिणमित हुई भावना, तो उस भावना के साथ कर्म का उदय का संबंध नहीं है। बहुत अच्छी बात है, जरा गहराई से लेने की बात है कि जीव को संसार में जो भी शुभ शुभ परिणाम होते हैं तो उस वक्त उसी कर्म का उदय होता है। तो उदयिक भाव रूप उदय के अनुसरण करने वाली ये भावना नहीं है, आत्मा को आत्मा में से उत्पन्न हुई भावना है, उदय के कारण से उत्पन्न हुई भावना नहीं है। उदय में क्या होता है कि उदय पूरा हो जाता है तो बात पूरी हो जाती है। इच्छा उदयाधीन है, भावना उदयाधीन नहीं होती। जो सच्ची भावना है उदयाधीन नहीं होती, वो आत्मा में से आत्मा को उत्पन्न हुई है। उसके कर्म का उदय के साथ इसका संबंध नहीं है, जुड़ान नहीं है, ऐसी बात है। तो भावना के साथ पुरुषार्थ अवश्य अवश्य होता ही है। जो पुरुषार्थ को उत्पन्न न कर सके वो भावना ही नहीं है, उसको भावना कहनी चाहिए नहीं। हम लोग क्या ऊपर ऊपर से ले लेते, हमारी भावना तो है, मोक्ष पाने की हमारी भावना है, धर्म करने की भावना है, हमको संसार परिभ्रमण और संसार के दुख नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा उदय ऐसा है, हमारा प्रतिकूलता का उदय आ गया तो ऐसा है, हमारा अनुकूलता का उदय आ गया तो ऐसा है, बहुत प्रकार के उदय आते हैं, क्या करें, उसमें उदय के साथ रहना पड़ता है। ऐसे नहीं होते, भावना किसी को गिनती नहीं। क्या भावना किसी को गिनेगी नहीं? ऐसे तो भावना के जो परिणाम होते हैं वो कोमल होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। परंतु इस भावना के आड़े कोई आता है तो वज्र से भी कठोर हो जाती है। वज्र इसके आगे कुछ नहीं है, ऐसी भावना होती है। इसका हम दृष्टांत देते हैं कभी कि पानी है, ऐसे तो पानी नरम है, पत्थर जैसा कठोर तो नहीं है, लेकिन जो पानी नदी के प्रवाह रूप में बहने लगा, इसके बीच में आड़े पत्थर के बड़े बड़े चट्टान आएंगे तो पत्थर की छाती चीर करके आगे जाएगा, पत्थर घिस जाएगा, पत्थर का कंकर हो जाएगा, रेती हो जाएगी उसकी। किसने किया? तो कोमल पानी ने कर दिया। वो पानी कोमल है फिर भी वो पत्थर को तोड़ेगा, ऐसे भावना कोमल है, बहुत कोमल है, लेकिन अपनी भावना के आड़े कोई आएगा तो उसका चूर चूर हो जाएगा, जैसे पत्थर का चूर चूर हो जाता है। ये भावना का स्वरूप है, भावना किसी को गिनती नहीं है, गिनेगी नहीं। वेंसरी ने लिखा है आगे जाकर के कि ये भावना कभी निष्फल होती नहीं, कुदरत को झुकना पड़ता है इसके आगे। क्या कुदरत को झुकना पड़ता है? अरे कुदरत को इसके गुलाम होकर के रहना पड़ता है, ये भावना का स्वरूप है। महेश्वरी ने तो वहां तक लिखा है कि ऐसी चैतन्य में से उत्पन्न हुई सच्ची आत्मकल्याण की भावना हो तो वो भावना अगर निष्फल जाए तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। क्या लिखा? 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। एक परमाणु शून्य नहीं होता, परमाणु का अभाव नहीं होता, एक परमाणु अवस्था से अवस्थांतर होता है, रूप से रूपांतर होता है, लेकिन नाश कभी नहीं होता। पानी की हवा बनती है, हवा से पानी बनता है, बर्फ बनता है, कुछ भी बनता है, लेकिन पानी का परमाणु का कभी नाश नहीं होता, जगत में से एक परमाणु का कभी अभाव नहीं होता। ये तो अनंता परमाणु का पिंड है 14 ब्रह्मांड। तो भावना के आगे उसको शून्य होना पड़े अगर भावना निष्फल जाए तो। मतलब ऐसा है कि भावना कभी निष्फल जाती नहीं, इतनी गारंटेड बात ज्ञानियों ने अपने अनुभव से किया है।
भावना
क्या प्रश्न आया कि भावना में तो फोर्स होता है, आप लोगों ने सुना कुछ, हम भी थोड़ा फोर्स में आ जाते हैं बोलते बोलते, लेकिन हट के परिणाम में भी फोर्स होता है, कभी जिद का परिणाम होता है, तो उसको डिफरेंशिएट कैसा करे, प्रश्न वो है, अंतर क्या है दोनों के बीच में। जो हठ होती है वो आत्मा के विषय में नहीं होती है, आत्मा के विषय में तो भावना ही होती है। हठ बाह्य कार्य के प्रसंग में होती है, बाह्य क्रिया के विषय में होती है। हठ का संबंध पुद्गल परिणाम के साथ है, जड़ के साथ है, चैतन्य के साथ नहीं है, जबकि भावना का संबंध चैतन्य के साथ है। इस तरह से वो डिफरेंशिएट किया जाता है। स्वयं हट का परिणाम, जिद का परिणाम ऐसा होता है कि परिणाम बिगड़ जाता है, निम्न स्तर का हो जाता है, फिर भी हट करने वाला हट नहीं छोड़ता। जैसे किसी ने उपवास कर लिया कि उनको 15 दिन का, 1 महीने का उपवास करना है, परिणाम बिगड़ने लगा, परिणाम का ठिकाना रहा नहीं, बहुत परिणाम क्लेशित होने लगे, दुखमय होने लगे, तो वो हट है, जिद है। और भावना में से अगर वो वही व्रत लिया होगा, अंतर की भावना में से लिया होगा, तो कुछ भी शरीर का हो जाएगा, परिणाम प्रसन्न चित्त वाला रहेगा, बहुत प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, चाहे तबीयत बिगड़े, कुछ भी हो जाए, परिणाम नहीं बिगड़ेगा। बात तो वो की वो है, तो जो हठ होती है उसमें परिणाम का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो हठ है खुद असरलता का परिणाम है। सरलता से विरुद्ध असरलता का जो परिणाम है उसको हठ कहते हैं। और भावना होती है उसमें तो परिणाम उत्तरोत्तर वृद्धिगत होते हैं, निर्मल होते हैं, बलवान होते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो भावना तो आत्मा का शुद्धिकरण करने वाली चीज है, जबकि हट है वो आत्मा को मलिनता में ले जाने वाली है। इस तरह से जो अपने परिणाम में पवित्रता और मलिनता को समझता है वो तो उसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है, उसका तफावत उसको मालूम पड़ता है। निर्मल पर्याय से, इसलिए तो उसका शुभ पर्याय तो शुभ कर्म के उद्देश्य के साथ उसका संबंध हो गया, ये तो आत्मा के साथ संबंध रखने वाली चीज है। भावना है तो आत्मा से सीधा इसका संबंध है, चैतन्य से, चैतन्य में से उत्पन्न हुई भावना है, चैतन्य को आत्मा कहो, परम पारिणामिक भाव कहो, एक ही बात है, वो तो एक ही बात है। इसलिए वो शुभ परिणाम केवल, शुभ परिणाम केवल नहीं लेना। देखो हम लोगों का जो तत्व का अभ्यास है, तत्व ज्ञान का, उसमें भी हम शुभाशुभ को बहुत मुख्य करते हैं, लेकिन एक परिणाम में श्रद्धान का परिणाम क्या, ज्ञान का परिणाम क्या, और शुभाशुभ तो आचरण का परिणाम है, चारित्र का परिणाम है। तो हम एक को पकड़ते हैं, दो का क्या हालत है उस देखते ही नहीं है। तो सच्ची भावना में तो दर्शन मोह का घात होता है, ज्ञान की निर्मलता होती है, और वो तो मुख्य नींव की बात तो वही है, बेसिक बात तो वही है, आचरण की बात तो बाद में है। तो साथ में जो शुभ विकल्प होता है ना, तो हमको लगता है कि देखो तो शुभ भाव है, लेकिन अकेला शुभ भाव नहीं है। हाँ, शुद्ध परिणाम ज्ञानी को होते हैं, तो ज्ञानी को सही भावना ज्ञानी को होती है, बाद में सही भावना उत्तम कोटि के मुमुक्षु को होती है। और उत्तम कोटि का मुमुक्षु है वो कारण है, और ज्ञान दशा वो इसका कार्य है। हम कार्य को स्वीकार करते हैं और कारण में हमको कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन नजर आता है, ये सही बात नहीं है। कार्य को अगर हम स्वीकार करते हैं तो कारण का स्वीकार साथ साथ होना ही चाहिए। इसलिए कृपालु देव ने 751 पत्र में परमार्थ सम्यक दर्शन के दो कारण को समकित नाम दिया है। न शुभ दिया है, न अशुभ दिया है, न कोई दूसरी बात किया है, उसको समकित नाम क्यों दिया? समकित के कारण है, नाम क्या दिया? समकित दिया। और लिखा कि ये तीनों समकित सभी वितरागों ने मान्य किया है। मैं कहता हूं नहीं, वितरागों ने मान्य किया है, जिनेंद्रों ने मान्य किया है, इसलिए तीनों को स्वीकार। बात है, वो गंभीर बात है। ऐसे ही जो समकित का कारण है वो समकित है, शुद्धि का कारण है उसको शुद्धि में ले जाना भावना को, और जो आत्मज्ञान का कारण है उसको आत्मज्ञान में ले जाना। इसलिए 569 पत्र में कहते हैं कि आत्मविचार होता है उसको आत्मज्ञान होता है। जो आत्मज्ञान संसार के सर्व क्लेश और सर्व दुख से मुक्त कराने का कारण है, ऐसा जो आत्मज्ञान, वो आत्मविचार बिना उत्पन्न नहीं होता, वो आत्मविचार से ही आत्मज्ञान होता है। तो आत्मविचार को भी आत्मज्ञान कहो मां, कोई आपत्ति नहीं। बात ऐसी है थोड़ी पंकज भाई, कारण कार्य की श्रृंखला बराबर समझ करके हमको, क्योंकि हम कारण के स्टेज में आए हैं, कार्य तो बाद में आएगा। कारण का सेवन नहीं किया तो कार्य कहां से आएगा? इसलिए कारण हमारे लिए बहुत प्रयोजनभूत है। इसलिए कारण के विषय में पूरा छंछेड़ करके उसका स्पष्टीकरण लेकर के अपने को उसमें प्रवेश करना है। जी समझ में नहीं आया,
भावना में मुख्यतः किसके ज्ञान की या श्रद्धान की?
भावना में सभी गुण आते हैं, श्रद्धान भी आता है, ज्ञान भी आता है, आचरण भी आता है, पुरुषार्थ भी आता है और शांति भी आती है, सब गुण आते हैं। भावना एक गुण के पर्याय नहीं है, सभी गुण उसमें जुड़ते हैं, कोऑर्डिनेशन है सभी गुण का वहां, ऐसी बात है। हाँ, उस भूमिका का वो आत्मकल्याण का सच्ची भावना, सच्चा भाव वही आत्मज्ञान है, वही समकित है। तो कारण कार्य समझ लेना। और भी प्रश्न है वो कल के टाइम में लेंगे, 9:30 तक है, 8:30 और 15 मिनट। भावना और प्रश्न है आगे, ज्यादा नहीं है। भावना और भावुकता और भावावेश उसमें क्या अंतर है, क्या प्रश्न है? भावना का स्वरूप तो अपने को चर्चा में आ गया, अब भावुकता कैसे कहते हैं और भावावेश किसको कहते हैं? भावना जैसा लगे लेकिन भावना नहीं हो, ऐसी एक भावुकता की भी पर्याय दशा होती है। जैसे कि आत्मकल्याण का भावना नहीं है लेकिन भावुकता के भाव है, उसमें अंतर क्या पड़ता है? कि भावना के परिणाम हमेशा हमेशा वृद्धिगत होते रहते हैं, जबकि भावुकता के परिणाम दूध के उफान जैसे होते हैं, आता है तो जोर से और बैठ जाता है भी शीघ्रता से, तुरंत बैठ जाता है, उसको कहते हैं भावुकता। तो भावुकता प्रकृतिगत चीज है, जबकि भावना चैतन्य में से उत्पन्न होती है, प्रकृति में से नहीं उत्पन्न होती है। भावुकता जो है वो प्रकृतिगत है, कईयों की ऐसी प्रकृति होती है बहुत भावुकता में आ जाए, एकदम उभरा आ जाए तूफान और फिर बैठ जाए, इसके परिणाम कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा, उसको ही नहीं पता, दूसरे को भी आश्चर्य होगा, अरे इतना बात करता था अब तो कुछ नहीं है, इसके असर भी चली गई। भावना वाले को ऐसा नहीं होता है, भावना वाले का परिणाम उत्तरो उत्तर वृद्धिगत होते हैं, भावुकता के परिणाम बैठ जाते हैं।
चार प्रकृतियों में भावुकता कौन सी प्रकृति में जाती है? मान लो
क्रोध नहीं है, मान भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, है?
लोभ में नहीं जाता
है,
लोभ में जाने का, लोभ में जाने
का। कुछ एक प्रकार लोभ में जाता है, कुछ एक प्रकार माया में जाता है, दो प्रकार होते हैं विचारने से ऐसा लगता है। कभी कभी नया प्रश्न ही सामने आ जाता है, हमने सोचा भी नहीं हुआ है, सोचने से विचार करने से ऐसा लगता है कि भावुकता है तो कभी लोभ वशात उत्पन्न होती है तो कभी मायाचार से भी हो जाती है, दोनों प्रकार होता है। हैं? लोभ में ऐसा होता है कि कुछ न कुछ कामनाएं होती है आत्मकल्याण के सिवाय, और इसके पीछे भी भावुकता आती है। और कभी भावुकता का दिखाव अच्छा लगता है दूसरों को तो बार बार भावुकता में भी आना बन जाता है। ऐसे दो प्रकार सूक्ष्म रूप से वो लोभ का भी प्रकार सूक्ष्म है उसमें, और माया का भी प्रकार उसमें थोड़ा सूक्ष्म है, इसलिए सीधा नजर नहीं आता है। वो भावावेश में जाता है। जो हिस्टीरिया है या क्रोध का आवेश है, मान का आवेश है, लोभ का आवेश है, वो सब भावावेश है। कषाय का आवेग को भावावेश कहते हैं। ऐसे भावना, भावुकता और भावावेश अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं हैं।
अंतिम दो का संबंध कर्म के साथ
है। कर्म के साथ है, हृदय के साथ है, जबकि भावना का संबंध आत्मा के साथ है। भावुकता एवं भावावेश से हमें किस प्रकार का नुकसान होता है, नया कर्म बंद होता है, और मोक्ष मार्ग में प्रवेश होने के लिए प्रतिबंधक है, अवरोधक है, वो गुण के उत्पादक नहीं है, दोष के उत्पादक है, इसलिए आत्मा को आवरण आता है, इस प्रकार का नुकसान होता है, आत्मा को आवरण होने का नुकसान होता है।
भावुकता को भावना में खो दिया जाए तो ये तो बहुत ज्यादा विपर्यास अति परिणामी परिणाम हो जाता
है।
लोगों की नजर में आता है कितनी भावना वाला है।
प्रश्न क्या है?
भावुकता
के भावुकता को भावना में ले जाए तो क्या होगा? नुकसान होगा, गलत फहमी होगी, गलती होगी, इससे कोई फायदा तो नहीं है। भ्रम में रह जाएगा, खुद भी भ्रम में रह जाएगा और दूसरों को भी भ्रम हो सकता है कि देखो बहुत भावना वाला है, होता है भावुकता में। हाँ, उतना एक दृष्टांत वो है कि जो भावुकता में आता है तो जैसे भावुकता में आकर कभी कोई दीक्षा ले लेता है, अरे संसार दुखमय है, छोड़ो इस संसार को, तो भावुकता में आकर के क्या करता है, दीक्षा ले लेता है, फिर त्यागी होने के बाद उसके परिणाम, त्यागी होने के बाद इसके जो परिणाम है वो संसार के चालू हो जाता है, खाया पिया, अनेक प्रकार के स्मरण आता है भोग उपभोग का, और इसका चित्त है वो धर्म में नहीं लगता, तो उफान आया था वो बैठ गया। ऐसा बनता है कि नहीं बनता है कि दीक्षा लेने के बाद परिणाम और खराब हो जाए, जबकि भावना वाले का परिणाम तो वृद्धि वर्धमान हो जाएगा।
ऐसी भावुकता द्वेष से उत्पन्न हुई है, ऐसी भावुकता
द्वेष से उत्पन्न हुई है कि संसार खरा है, संसार झूठा है, संसार दुखमय है, संसार के प्रति द्वेष आ गया, कुटुंबियों के प्रति द्वेष आ गया। द्वेष से करने वाली चीज नहीं है, न राग से करने की चीज है, न द्वेष से करने की चीज है। और भावावेश तो प्रकृतिगत कहीं सबों को देखने में आता है, जब आवेश में आता है तो कुछ भी हो जाता है, तो उससे तो नुकसान है ही है। तथा उस नुकसान से हम कैसे बचकर यथार्थ भावना में आ जाएं, इसकी विधि बताइए, ये प्रश्न है। कि भावना और भावुकता का और भावावेश का स्वरूप समझ ले सत्संग में हम, और हम हमारे परिणाम को ठीक करें, ईमानदारी से हमारा आत्मकल्याण के विषय में हम आगे बढ़े। किसी को दिखावा करने की चीज ये नहीं है कि हम धर्म करते हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम धर्मी हैं, हम फलाने हैं, ये कोई चीज जरूरी नहीं है, ये तो हमारे आत्मकल्याण का विषय है। सिर्फ एक ही लक्ष्य से, एक ही निष्ठा से अगर हम करेंगे तो हमारी भावना सही है, वरना भावुकता या भावावेश में आकर के कुछ भी करेंगे तो वो बात तो टिकने वाली नहीं है। जैसे आर्टिफिशियल चीज टिकती नहीं है, असली चीज टिकती है, ऐसी बात है उसमें। तो बहुभ्रमण की चिंता कैसे लगानी, बहुभ्रमण की चिंता लगती नहीं है इसलिए क्या करना। देखिए, लगाने की चीज नहीं है ये, तो समझ से लगनी चाहिए। समझ हमारी यथार्थ नहीं है, परलक्ष्य है, तो हमको नहीं लगेगी। भाव चिंता कोई लगाई जाती है क्या? लगाने की चीज होती है। आपको आपत्ति कोई आई तो आपत्ति की चिंता कोई आपको सिखाने की चीज थोड़ी ना होती। हाँ, ये सहज स्वाभाविक होने वाली चीज है। इतना दुख का समुंदर माथे पहाड़ पड़ा है, देखिए ना, 3 इंच प्राणियों को कितना दुख होता है। आज तो हमको कुछ दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई ले आते हैं, मरम्मत करते हैं। 3 इंच को क्या होता है? क्या उसको बीमारी नहीं आती? अपन तो घर में अनाज भर के रखेंगे, चलो ये गेहूं की सीजन आई, 12 महीने का गेहूं ले, चावल ले लो 12 महीने का, वो ले लो, वो ले लो। 3 इंचों को कौन का अपने खुराक के लिए कौन सा प्रोविजन है? न उसको घर का प्रोविजन है, न उसका संरक्षण का प्रोविजन है, न इनका खाने पीने का प्रोविजन है। हम तो बेसहारा बनने की कल्पना में ही हमारी छाती पर भीस आ जाएगी अगर हमको कोई सहारा नहीं है। लेकिन 3 इंच को क्या है, पशु पक्षी को क्या होता है? ये पक्षी होते हैं, बारिश के सीजन में अंधराधार पानी बरसता है, क्या करे बेचारे, कहां जाए? पेड़ पे रहते हैं तो पेड़ पे पानी नहीं गिरता है क्या? कहाँ जाए वो? हमको तो घर से बाहर एक कदम रखने को तैयार नहीं है, वो कहाँ जाए? उसको तो घर ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति है, बनती है जीव की, ऐसी परिस्थिति बनती है। ये हमारी नजर के सामने है कि नहीं है? वो भी एक जीव है कि नहीं है? ऐसा क्यों हुआ इसको कि उसने अपने आत्मकल्याण की दरकार नहीं की? उस विषय में वो बेदरकार रहा, सावधान नहीं हुआ, जागृत नहीं हुआ, तो परिणाम तो गिरेंगे ही गिरेंगे, बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, इसका फल आएगा ही और आएगा। चावल बोने से चावल मिलेगा और जुवार बोने से जुवार मिलेगी, उसमें कोई दूसरी चीज मिल सकती नहीं है। ये कुदरती व्यवस्था है, ये कुदरती व्यवस्था है। तेते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव, कुदरत का स्वभाव है ये कि जैसा भी कर्म जीव करता है उसका भोगने का स्थान उसको मिल जाता है। बिना कोई पण व्हीकल के बिना उसको वहां पहुंचना होता है कि नहीं होता है? जहां जीव पैदा होता है शरीर यहां छोड़ देता है, कोई साधन बिना चला जाता है कि नहीं चला जाता है? उसके लिए कोई प्लेन आता है क्या? कोई गाड़ी आती है क्या? ऐसे ही चला जाएगा, एक सेकंड में गति करके चला जाएगा। तो ये तो लगाने की चीज नहीं है, कृत्रिमता करने की चीज नहीं है, ये समझ की चीज है। सही समझ आएगी तो चिंता हुए बिना रहेगी नहीं, नियम से होगी। भव भ्रमण की चिंता न लगे वहां तक क्या करना, चिंता लगे ऐसा सत्संग, ऐसा स्वाध्याय, ऐसे शास्त्र, इस प्रकार के विचारधारा में रहना, इसका ही विचार करना। चिंता नहीं लगे तो और कुछ कर लेना, पूजा कर लेना, भक्ति कर लेना, यात्रा कर लेना। तो भ्रमण की चिंता न लगे तो ऐसी बात नहीं होती। दूसरे सब विकल्प को दूर करके आया कि नहीं आया दूसरे को? हाँ, एक यही सबसे पहले करने योग्य है। अगर ये नहीं हुआ तो आत्मकल्याण के विषय में एक कदम भी जीव सही नहीं भरेगा, उसके सब कदम गलत होएगा, ऐसा समझना चाहिए। एक प्रश्न रह गया है। निहालचंद जी, सोगानी सोनगढ़ आया नहीं, यमुना पत्रांकुर जी सोनगढ़ आ सकता नहीं, तुझे गुरुदेव पास बारंबार लखे से तो आटला काम में त्या सत्संग होतो, वाचन स्वाध्याय था, एम एम जीवन विषय में यादगार क्षणों शू थी? तो सोगानी जी के जीवन के विषय में प्रश्न थोड़ा विस्तार से लेंगे कल। उसका जीवन वृतांत तो दूरदृष्टि प्रकाश में छपा ही है, फिर भी थोड़ा इस प्रश्न के उत्तर में ले लेंगे, कर लेंगे।